अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की इस घनी वादियों में और इस सावन की रिमझिम फुहारों के बीच आप सभी ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग से जुड़े हुए महान अतिथि जो अपनी जोश को बरकरार रखे हुए इस सेमिनार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत इस सत्र में स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो हमारा विषय है उस विषय पर प्रकाश डालने के लिए एक बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती डॉक्टर गिरीश पटेल जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर गिरीश पटेल एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसी ऊर्जा का नाम है जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करके और विभिन्न ध्यान की क्रियाओं को भी जाना और उनमें महारत हासिल करने के बाद फिर जब आप राजयोग केंद्र पर आए और जो शक्ति और अनुभूति आपने अपने जीवन में करी, तो आपने ये संकल्प किया कि मैं अपना ये जीवन और अपनी जो ये डिग्री है, अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो योग्यता है, उसको जनमानस तक किस तरह निशुल्क रूप में पहुंचाया जाए, इस उद्देश्य को लेकर के आपने 20 वर्ष की उस युवा अवस्था में देश विदेश के अनेक स्थानों पर जाकर के राजयोगा मेडिटेशन के साथ साथ स्ट्रेस फ्री लिविंग, पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अनेकानेक ऐसे विषयों को लिया, न सिर्फ इंडस्ट्रीज, न सिर्फ यूनिवर्सिटीज, बल्कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें आपने अपने अनुभव से सभी जनमानस को प्रेरित ना किया हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं। और आप हमारे राज्यों का एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की जो मेडिकल विंग है उसके आप ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी भी हैं। उसके साथ साथ आपकी इन सेवाओं को देखते हुए देश विदेश से अनेक अवार्ड आपको प्राप्त हुए हैं। आपने जहां भी गए एक्सीलेंस का अवार्ड, गोल्ड मेडल अवार्ड आपने प्राप्त किया। वर्तमान समय आपकी इन सेवाओं को, इस चेहरे को आप सभी आस्था चैनल पर शिवानी बहन के साथ कई बार देख चुके होंगे, तो विभिन्न टीवी चैनल्स पर आपके इंटरव्यूज आते रहते हैं और मलेशिया में भी आप रेगुलर एक चेन सीरीज जो हेल्थ से रिलेटेड एक टीवी सीरियल था उसमें भी आपने अपना योगदान दिया और 21 वर्ष की अवस्था में आपने खुद हेल्थ के ऊपर एक बुक राइट करी, वो पब्लिश हुई, उसे भी बहुत सराहा गया। उसके साथ साथ हमारे साथ अतिथि के रूप में मैं निवेदन करती हूं तरुण जी से, तरुण चंद्र शर्मा जी, आपसे निवेदन है कि आप भी आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वर्तमान समय आप हांडा लिमिटेड गुड़गांव में अपनी सेवाएं डीजीएम की पोस्ट पर दे रहे हैं। तरुण भाई साहब के बारे में इतना अवश्य कहेंगे कि आप धीर, वीर और गंभीर हैं। चेहरे पर सदा वो तरुण, तरुण का अभिप्राय होता है मासूम, छोटा सा, तो उस अपनी पवित्र छवि को सदा इस उम्र में और इस ओहदे तक बनाए रखना वो शायद बहुत मुश्किल होता है। तो आप तो सचमुच एक योगी तपस्वी हैं, और इस तपस्या साधना का प्रभाव न केवल अपने तक रखने के लक्ष्य से, बल्कि जहां भी हम जाएं, जिनके साथ भी हम हैं, उन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही आप हमारे साथ इस सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। इनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं हमारी बहनों से निवेदन करूंगी कि हमारे डॉक्टर गिरीश पटेल भाई और तरुण भाई साहब का पुष्पों के द्वारा और बैचेस के द्वारा सम्मान करेंगे। अभी हम परमात्मा की स्मृति में स्थित होंगे।
पता भाग्य हमारी जगा रहा,
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा।
परमात्मा शक्तियों वरदानों
अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा, परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा।
तो अभी हम सब अल्टीमेट इंटेलिजेंस की ओर चलेंगे, और आपको इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे किया जाए उस जोश और शक्ति की दुनिया में लेके चलने के लिए डॉक्टर गिरीश हैं।
ओम शांति। देखो अभी भी सब नहीं बोल रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं बोल रहे मालूम है? सोचते इनका कोई धर्म का शब्द है, हम क्यों बोले? हम तो अपना बोलेंगे, हरे राम। परंतु हाँ, ओम शांति से धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। कहते हैं ओम के 108 अर्थ है। एक अच्छा अर्थ आप सब समझ भी गए होंगे। ओम का क्या अर्थ है? ओम का अर्थ नहीं मालूम? क्या किया? हाँ, तो ओम अर्थात कि मैं आत्मा। तो आत्मस्मृति पक्की होगी। और एक बहुत अच्छा अर्थ है, कहीं आपने ऑफिस में भी देखा होगा, ओम वेलकम टू गॉड, भगवान का स्वागत हो, भगवान हमारे बीच में आए तो अच्छा है, अच्छा है, बोलो बोलो, अच्छा है, अच्छा है, तो बोलना पड़ेगा ओम शांति। सब सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, देखो मैं प्रूव करके बताता हूं कि नहीं सुन रहे, सब खड़े हो जाएंगे एक बार, ध्यान से सुनना। हाँ, शिव बाबा की आज्ञा ही माननी है, शिव बाबा तो सब समझ गए ना, शिव बाबा कौन, शिव बाबा कौन, परमात्मा, निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा को शिव बाबा कहते हैं। अल्टीमेट इंटेलिजेंस को जीवन में लाना है तो सिर्फ भगवान की आज्ञा को मानना है ना, भगवान कहे वैसे ही करने का, शिव बाबा कहे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, शिव बाबा कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, ठीक है। हाँ अच्छा, शिव बाबा कहते बैठ जाओ, बैठो बैठो, हाँ शिव बाबा कहे तब मानने का, बैठो बैठो, हाँ मैं बोलूंगा लेकिन शिव बाबा शब्द आना चाहिए, यहाँ बैठिए, हाँ शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी, हाँ शिव बाबा कहते बैठ जाओ, जल्दी जल्दी करो, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, शिव बाबा कहते बैठ जाओ, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, वेरी गुड, बैठ जाओ। नहीं, नहीं सुन रहे हैं ना, नहीं सुना, नहीं सुना ना, ओके वेरी गुड, बैठ जाओ। अभी भी क्या शिव बाबा ने थोड़ी बोला, देखो दो चार ही बचे, सब हार गए, ठीक है। अच्छा नहीं, ऐसा कोई कहे ना तो भी गलत है। हाँ बैठिए बैठिए, देखो आज समस्या ही ये है बहुत बड़ी कि ना कोई गुरु के हजार दो हजार शिष्य हो जाए ना, कहता मैं भगवान। हाँ वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअल, है ना, कोई भी गुरु कहे ना मैं भगवान हूं तो सोचो कहीं दाल में काला है, ना भगवान वो निराकार ही हो सकता है। अच्छा तो बात क्या थी कि ध्यान से सुनना, ना सुनते नहीं है ना हम, जितना ध्यान से सुनेंगे ज्यादा फायदा होगा। सिर्फ सुनना नहीं है, साथ साथ सोचना भी है, मेरे साथ साथ आप सोचेंगे तो और भी ज्यादा फायदा होगा, है ना, रिस्पॉन्स भी देना है। मैं स्वामीनाथन भाई जितना अच्छा नहीं बोलता हूं क्योंकि पागलों का डॉक्टर हूं ना, थोड़ी इफेक्ट तो होती है ना उनकी भी तो, हाँ लेकिन तो भी आपको ज्यादा प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, हाँ ज्यादा हंसना पड़ेगा, ज्यादा तालियां बजानी पड़ेगी ना, तब ये सेशन अच्छा इंटरेस्टिंग बनेगा। और एक चीज, इन चीजों को फील करना, देखो अल्टीमेट इंटेलिजेंस, भले मैं लास्ट बेस्ट मैन हूं, हाँ लास्ट लेक्चर है लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि भाई अच्छे से बोलूं। और अल्टीमेट इंटेलिजेंस प्राप्त करनी है तो अल्टीमेट कॉन्सेंट्रेशन भी प्राप्त कर, हाँ अच्छे से ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब आपको पूरा जो फायदा है वो होना है। मुख्य बात है अल्टीमेट इंटेलिजेंस के लिए सबसे जरूरी है सेल्फ मोटिवेशन। आज और चीजें हमें मोटिवेट करती है वह अच्छा नहीं। देखो क्या होता है, आज से कई साल पहले की बात है, तब विंस्टन चर्चिल इतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे और उनका एक बार बीबीसी में लेक्चर होना था, तो उन्होंने एक टैक्सी हायर की, टैक्सी वाले को कहा कि भैया मुझे बीबीसी पहुंचा देगा, कहेगा नहीं नहीं आज विंस्टन चर्चिल का लेक्चर होने वाला है, उसको पहचाना नहीं, बीबीसी में विंस्टन चर्चिल आज बोलने वाले हैं, मुझे उनका लेक्चर जरूर सुनना है, मैं आपको आधे रास्ते तक छोड़ सकता हूं, उससे आगे नहीं छोड़ सकता हूं। उनका ठीक है, अभी आगे कुछ और कर लेंगे, हाँ भले आधे रास्ते तक छोड़ देना। हाँ और उसका किराया था £1, तो विंस्टन चर्चिल बड़े खुश हुए, देखो कितना इसका त्याग है कि भी पैसा भी छोड़ रहा है मेरा लेक्चर सुनने के लिए, कितना अच्छा व्यक्ति है, हाँ मेरा फैन है। जब आधे रास्ते तक उसको छोड़ा तो बड़े खुश होकर उन्होंने उसको £2 दे दिए। उन्होंने देखा £2, तो उसने कहा विंस्टन चर्चिल खड्डे में जाए, मैं आपको बीबीसी पहुंचा देता हूं। समझ गए कि नहीं समझे, देखो समझ गए तो हंसो, नहीं तो घर में जाके हंसेंगे फिर। तो भी जब पैसा मोटिवेट करता है ना तब ऐसी हालत होती है, परंतु अगर हमें सचमुच कुछ जीवन में हासिल करना है तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज है वास्तव में। और ये जो फाइनल जो कुछ भी हम हासिल करना चाहते हैं उसके लिए इस एक बात को समझ लेना है कि जो हमारा मन है वही बंधन का भी कारण है और मन ही आपको मुक्ति भी दिला सकता है, है ना। देखो अभी आप जवाब दो, हाँ क्या करना चाहिए? इस माइक ने मुझे पकड़ के रखा है, माइक मुझे छोड़ता नहीं, इसने मुझे पकड़ के रखा है, क्या बोलेंगे? हाँ बोलो बोलो, क्या करूं? हाँ क्या जोर से बोलो, सुनाई नहीं देता है। हाँ मैंने पकड़ा है, माइक ने मुझे नहीं पकड़ा। तो ऐसे ही सारे प्रॉब्लम्स को हमने पकड़ा है, प्रॉब्लम ने हमको नहीं पकड़ा है, है ना। समस्याओं को हमने पकड़ा, बस इतना आप समझ लो। कहते ना छोड़े तो छूटे, बस आप देखो दुख से छुटकारा पाना चाहते हो दुख छूट जाएगा, अशांति से मुक्त होना चाहते हो अशांति समाप्त हो जाएगी, सिर्फ इनिशिएटिव हमको ही लेना पड़ेगा। और अल्टीमेट इंटेलिजेंस के लिए एक चीज आपको करनी पड़ेगी, वह है कि कैरेक्टर को चारित्र को अच्छा बनाओ, है ना। जब तक वह अच्छा नहीं है कुछ नहीं मिल सकता। जब स्वातंत्र का संग्राम चल रहा था तो एक नौजवान पकड़ा गया, उसको फांसी की सजा हो गई, तो अंग्रेज उसके पास गए, कहा कि तू मेरा साक्षी बन जा हमारा, वो नहीं माना। थोड़े दिन के बाद फिर से गए, कहा कि देख तेरी मां रो रही है, है ना, मां के आंसुओं को देखकर तो हमारा साक्षी बन जा, हम तेरी सजा को कम कर देंगे। नौजवान ने क्या कहा पता है? कि मां के आंसुओं को देख करके अगर देश के प्रति मेरा कर्तव्य भूल गया तो ये मां के आंसुओं का अपमान है, और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया। सो दिस इज कैरेक्टर। सचमुच ये सोचे कि भी जो जीवन में वैल्यूज की जरूरत है वो बहुत बहुत जरूरी है, और किसी भी कीमत पर उन वैल्यूज को मुझे काम नहीं करना। और एक बात को, सिंपल सी बात है, कैरेक्टर थोड़ा आपको मुश्किल भी लगेगा, सरल सी बात है कि आपको अगर अल्टीमेट इंटेलिजेंस चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, जो भी प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त करना है, तो आर्ग्यूमेंट नहीं करो। देखो आपका ही ट्रांसपोर्ट का ही उदाहरण लिया है ना, कि हॉर्न बजा बजा के ट्रैफिक ठीक हो सकता है? हो सकता है? जवाब नहीं देते, नहीं सकते। तो फिर आर्ग्यूमेंट से कुछ प्राप्ति हो नहीं सकती ना। आर्ग्यूमेंट से शायद आप जीत जाएंगे लेकिन मित्र को गंवा देंगे। एक व्यक्ति था, बड़ा इंटेलिजेंट था ना, वो 100 साल का हो गया, सचमुच जीवन में अल्टीमेट इंटेलिजेंस को प्राप्त किया था, 100 साल का हो गया। हाँ, तो लोगों ने बहुत उसको बधाइयां दी, पत्रकार भी मिलने को आए, कहा कि भी हमको राज बताओ, आप 100 साल कैसे जिए? तो उसने कहा कि नहीं कोई राज नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करता। तो पत्रकार ने कहा नहीं नहीं नहीं, और भी कुछ होगा, आप एक्सरसाइज करते होंगे, हाँ आप अच्छा खाना खाते होंगे। उसने कहा यू आर राइट, वहां भी आर्ग्यूमेंट नहीं की, समझे? देखो आप लोग ध्यान से नहीं सुनते इसलिए नहीं हंसते कि वहां भी आर्ग्यूमेंट नहीं की। तो बस ये पक्का सोच लो कि भी आर्ग्यूमेंट से बहुत कुछ हासिल नहीं होता ना, और युक्तियां अपनानी पड़ेगी, आपको बताऊंगा अभी, और बहुत सारी चीजें, उन चीजों को जीवन में अपनाओ, देखो ऑटोमेटिकली आपको जो चाहिए जीवन में हासिल करना चाहते वो हासिल भी हो जाएगा। जब सुरेश भाई ने और कविता बेन ने मुझे टॉपिक दिया अल्टीमेट इंटेलिजेंस, तो मैंने गूगल सर्च में जाके देखा कि भी क्या होता है अल्टीमेट, तो गूगल सर्च में टाइप किया तो निकला स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। मैंने कहा वाह कि वंडरफुल चीज है, ये तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। और क्या होती है पता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस? एक बार सिएटल में पैरा ओलंपिक्स हुआ, कि जो लोग पैराप्लेजिक थे, अपंग थे, उन लोगों का ओलंपिक्स। तो 400 मीटर रेस में आखिरी 8 बच्चे आए, और जैसे ही वह रेस शुरू हुई स्टार्ट, तो 15-20 कदम आगे गए, एक बच्चा गिर गया। दूसरा एक लड़का आगे ही दौड़ रहा था, उसने पीछे देखा तो पीछे आया, उसको कहा उठो उठो उठो। उसने बेचारे ने कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाया। तब तक और 6 बच्चों ने भी पीछे देख लिया, तो वो भी सब वापस आ गए। उसको बहुत प्रेरणा दे करके, सपोर्ट दे करके उसको उठाया, और सब फिर सबने हाथ में हाथ पकड़ा, भी कोई गिरना नहीं चाहिए, हाथ में हाथ पकड़ के सारे 8 बच्चे साथ में भागे और फिनिशिंग लाइन तक साथ में गए। स्टेडियम में 3,000 लोग थे, है ना, सभी ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। दूसरे दिन अखबारों में बड़े न्यूज आ गए। एक अखबार ने कहा हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, कि एक साथ में 8 लोगों को गोल्ड मेडल मिला। दूसरे अखबार ने कहा वी कॉल देम मेंटली रिटार्डेड, आर दे मेंटली रिटार्डेड और स्पिरिचुअली एडवांस्ड, क्या तो बस ना ये बात है। अल्टीमेट इंटेलिजेंस इज अ टीम वर्क। एक्चुअली हार्ड वर्क से बहुत कुछ नहीं मिलता है, स्मार्ट वर्क से मिलता है, है ना। हार्ड वर्क से नहीं प्राप्त होता है, टीम वर्क से जीवन में प्राप्तियां होती है। और बस एक बात को समझ लो, अल्टीमेट इंटेलिजेंस चाहिए सबको, चाहिए अल्टीमेट इंटेलिजेंस चाहिए? जवाब नहीं देते, हाथ को ऐसे करिएगा, ऐसे करो, देखो हवा में जोरदार मुक्का मारना है। हाँ, मैं पूछूंगा अल्टीमेट इंटेलिजेंस चाहिए तो यस, तो यस। हाँ, अल्टीमेट इंटेलिजेंस चाहिए? 20% ही बोल रहे, मैं सबको बोलना पड़ेगा। अभी भी बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे, हाँ जोर से बोलो ताकि ऊपर आ जाए, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि यहां कुछ चल रहा है। हाँ बोलो बोलो, हाँ जोर से बोलना है, सबको बोलना है, अल्टीमेट इंटेलिजेंस चाहिए? अभी भी देखो 10% ही जोर से बोलते, कितना आवाज है, तो जोर से बोलो, दादी जी को सुनाई देना चाहिए कि ये ट्रांसपोर्ट विंग की कॉन्फ्रेंस अच्छी चल रही है, लोग सो नहीं गए, नहीं तो हमारी कॉन्फ्रेंस में लोग सो जाते हैं। हाँ जोर सब बोलेंगे, हाँ अल्टीमेट इंटेलिजेंस चाहिए? देखो अच्छा लगा ना, देखो जिसने जोर से बोला उसके लिए ताली बजा दो। तो ये बात है कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज अ नॉवेल हुज फर्स्ट एंड लास्ट पेज इज मिसिंग, है ना। बस ये फर्स्ट एंड लास्ट पेज मिल गया, 4 दिन में मिला, हाँ नहीं मिला अभी तक, और थोड़ा योग सीखना आपको, जीवन का पहला और अंतिम जो पेज है वह मिल जाएगा। किसी ने कहा है रूह और जिस्म का अजीब इत्तफाक देखा, रूह और जिस्म का अजीब इत्तफाक देखा, सारी जिंदगी साथ साथ रहे परंतु रूबरू ना हो सके। जीवन भर साथ रहते हैं लेकिन पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, तो इस बात को पक्का करना, इसको अच्छे से समझना, दैट इज अल्टीमेट इंटेलिजेंस। आज भी हो जाएगा, चलो अभी तक नहीं हुआ तो और भी जो ये सत्र चलेगा ध्यान से इसमें पार्टिसिपेट करो, आपको बहुत कुछ प्राप्ति हो जाएगी। अब अल्टीमेट इंटेलिजेंस के लिए कहेंगे सबसे पहला कदम बेसिक है परंतु जरूरी है, वास्तव में जीवन में ना छोटी छोटी बातें बहुत उपयोगी होती ना, बहुत बहुत कुछ बड़ा नहीं बनना है, सिंपल सी चीजें करनी, और सिंपल सी बात है अवेयरनेस। हाँ सभी जागृत होके बैठे हैं, बैठे हैं जागृत होके बैठे हैं? देखो नहीं बैठे, मैं प्रूव करके बताता हूं, नहीं प्रूव करके बताता हूं कि जागृत होके नहीं बैठे, बताऊं प्रूव करके? हाँ, जब तक मान गए कि वे बंदा प्रूव करने वाला है। अच्छा देखो, कमर को सीधी रख के अंदर बैठो कुर्सी के अंदर एकदम, दोनों पैरों को जमीन पे रखो थोड़े अंतर पे, हाथों को ऐसे मोड़ दो, कंधे को ढीला छोड़ दो, मुंह को थोड़ा सा खोल दो। देखो कंफर्टेबल लगता है? पहले से कंफर्टेबल है? किसका किसका है कंफर्टेबल? पहले से कंफर्टेबल? तो देखो अब तक तो टेंशन में बैठे थे ना, अब तक जो बैठे थे कहीं भी फालतू टेंशन ले रहे थे, पैरों में, कमर में, कंधे में, मुंह में, कहीं ना कहीं दबाव था जिसका आपको मालूम नहीं था, क्योंकि सजगता नहीं थी। और सजगता मतलब क्या कि इस बात को कि बॉडी में भी जो फीलिंग हो रही है ना सदैव, उसके बारे में जागृत हो जाओ कि क्या हो रहा है। यहां तक अवेयरनेस मतलब क्या कहते, अवेयरनेस का मतलब है कि भी विचार आए उससे पहले उसको कैच कर दें। आपने भी शायद सुना होगा कि जिन लोगों को फिट्स आते हैं ना, नहीं शरीर में फिट्स आते हैं जिनको, उनको एक दो सेकंड पहले मालूम पड़ जाता है कुछ होता है, लाइट दिखाई दे रही कुछ ना, उनको पता चलता है भी दो चार सेकंड में फिट्स आने वाले। तो ऐसे ही हमको भी ये करना चाहिए कि सजगता का इतना अभ्यास करो कि विचार आए उससे पहले भी आपको मालूम पड़े कि भाई नेगेटिव विचार आ रहा है, ऐसा विचार आ रहा है, वो जरूरी है तो ही आए, नहीं आए तो स्टॉप। तो इसलिए सजगता का अभ्यास करो। देखो एक्सरसाइज भी सबको अच्छी लगी जो लोग आते थे? हाँ, एक्सरसाइज में कौन कौन आते थे? अच्छा देखो अच्छा लगा, अच्छा सेशन करना। तो वह भी एक्सरसाइज भी अवेयरनेस एक्सरसाइज कि भी सजग होके करो। आपको बताया ना इसे क्यों करना है, ताकि वाइब्रेशंस को फील करो कि क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, मूवमेंट भी हो रही है, जागृत हो जाए। तो इसे अल्टीमेट इंटेलिजेंस के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है कि प्रेजेंट में जियो, और है ना प्रेजेंट में जीना है तो भूतकाल और भविष्य काल के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है ना उसको खत्म करना पड़ेगा। अगर आप भूतकाल को पकड़ के रखेंगे तो कभी इंटेलिजेंट नहीं बन सकते, भविष्य के बारे में भी डरते रहेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। एक्चुअली करना क्या है, वर्तमान को इंजॉय करना। देखो सभी एक काम करेंगे, हाँ बोलते नहीं। देखो एक काम करना, यहां से जाओ ना उसके बाद, यहां तो कर रहे हैं अधिकतर, लेकिन यहां से जाके भी करना कि सवेरे सूर्योदय से पहले उठ जाओ। कई लोग सूर्योदय के बाद ही उठते, पूछा क्यों, तो कहते आपने ही बोला था ना हम तो सूर्यवंशी है। तो ऐसा नहीं, सूर्योदय से पहले उठो, और जैसे सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पे पड़े तो कहीं खिड़की के पास आ जाओ, गैलरी में आ जाओ, टेरेस में चले जाओ, और क्या करो पता है, ऐसे करना है, हाथ को ऐसे करो, करो सभी, किया है ना, बहन ने किया, चित्र को देखो ना, जैसे ही सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पे अंत बोले आहा, अच्छे से नहीं करते, हाथ को ऐसे करो, बोलने का वाह क्या क्या अच्छा दिन है ना। बस देखो आप इससे स्टार्ट करो, बहुत सचमुच सोचोगे आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं अच्छे से अच्छा करूंगा, बेस्ट जीवन में प्राप्त करूंगा। बस सवेरे ऐसे अच्छे से शुरुआत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और फिर वर्तमान में ही जीना है। और अल्टीमेट इंटेलिजेंस के लिए देखो, आप सब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट की बात बताता हूं, सिंपल सी बात, हाँ ट्रैफिक सिग्नल का मीनिंग। बस आप लोगों के ना ट्रांसपोर्टर्स को मेडिटेशन करना बड़ा सिंपल है, ट्रैफिक सिग्नल में ही मेडिटेशन है। क्या है, स्टॉप, फिर लुक विदिन, है ना अंदर में देखो, और देन लिसन, अंतरात्मा की आवाज को सुनो, परमात्मा की आवाज को सुनो। तो सारा सिंपल हो गया ना, क्या है मेडिटेशन? स्टॉप, लुक, लिसन, बस इतना करते रहो। और बड़ी सहज सी बात कि अल्टीमेटली इंटेलिजेंट बनना है तो भले सब कुछ खो जाए परंतु आशा को नहीं खो। कोलंबस है ना अपने कुछ साथियों को लेकर के भारत को ढूंढने निकला था, सुना था कि भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन बहुत टाइम बीत गया, अनाज भी खत्म हो गया, पता नहीं हम कहां जा रहे हैं है ना, परंतु भारत पहुंचने के कोई आसार ही नजर नहीं आ रहे थे। तो उनके जो साथी थे वो भी बड़े डिस्टर्ब हो गए, कहे कि भाई ये तो इसकी चार आने ठीक नहीं है, खुद भी मरेगा हमको भी मारेगा। लोगों ने बोला वापस चलो, और वो नहीं माना तो इसको ही हम फेंक देते समुद्र में और हम वापस जाते, इसलिए हम तो जिंदा रहेंगे। तो सारा रिवॉल्ट हो गया। तो तब कोलंबस सबके बीच में खड़ा हुआ और हाथ जोड़ के उसने कहा है ना कि बस मुझे आप सिर्फ 7 दिन का समय दो, अगर 7 दिन में हम भारत के किनारे पर नहीं पहुंचे तो हम वापस जाएंगे। इतिहास साक्षी है, चौथे ही दिन वह अमेरिका पहुंच गए। इसलिए कहते हैं कि अगर आप आशा को नहीं खोएंगे, इफ यू डोंट लूज योर होप यू विल फाइंड योर ओन अमेरिका। तो इसलिए जीवन में होप को कभी भी खत्म नहीं करना है। और यह साइंटिफिक बात भी है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस सिर्फ मनोविज्ञान की आध्यात्म की बात नहीं। डॉक्टर रामचंद्रन ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ऐसी रिसर्च की स्पेशल एमआरआई के द्वारा, उन्होंने पाया कि जब लोग मेडिटेशन करते थे, कोई धार्मिक वृत्ति करते थे, तो ब्रेन का एक स्पेशल पार्ट था वो एक्टिवेट होता था है ना, जिसको उन्होंने कहा गॉड स्पॉट, फ्रंटल कॉर्टेक्स का एक हिस्सा है कि जो प्रकाशित होता है, जो एमआरआई में दिखाई भी देता है। बल वहां भगवान है ऐसी बात नहीं, परंतु जब हम भगवान को याद करते हैं तो वह हिस्सा जागृत होता है। कहते हैं जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से हो न सके वह बात दुआ से होती है, जब काबिल गुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो इसलिए खुदा से बात करनी है। और तीन चीजें देखो है ना, तीन प्रकार के डॉक्टर है ना, एक तो शरीर के डॉक्टर हाँ फिजिकल डॉक्टर जिसको कहेंगे ना, दूसरा है इनर डॉक्टर, एक डॉक्टर हमारे अंदर ही है, और तीसरा है सुप्रीम डॉक्टर। ये तीन डॉक्टर क्या करते हैं पता है ना, डॉक्टर ट्रीट्स द डिजीज, इनर डॉक्टर हील्स द डिजीज, एंड सुप्रीम डॉक्टर क्योर्स द डिजीज। समझ गए? तो किस पर डिपेंड करेंगे हा? किस पर? सुप्रीम डॉक्टर पर, कि जो क्योर करता है ना। ये डॉक्टर तो मेरे जैसे डॉक्टर तो सिर्फ ट्रीटमेंट देते, दवाई दे दी, फीस दे दी, काम हो गया। जो आत्मा का डॉक्टर है वो हीलिंग को बढ़ाता है, उसको भी अच्छा करो ताकि हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो, और सुप्रीम डॉक्टर सचमुच हमें क्योर करता है। और अब इसके लिए और एक काम यह करना है कि मन को अनकंडीशनल प्यार देने की आदत डालो। आज हम सब प्यार देते हैं लेकिन वो प्यार में ना शर्त होती है। सचमुच प्यार चीज ही ऐसी है कि जिसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, जिसमें शर्त है वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें शर्त है वह प्यार नहीं है, बस ये पक्का समझ लो। तो भी ऑटोमेटिक आप बिना शर्त के प्यार देने भी लगेंगे, बिना शर्त के प्यार प्राप्त करने भी लगेंगे। साथ साथ चाहिए कि नहीं, जो पूरा पुरुषा सच्ची मेहनत अगर देखो, अल्टीमेट इंटेलिजेंस को प्राप्त करें, और चीजें सहज है, मैंने और बताई, आगे भी बताऊंगा, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा पुरुषार्थ करना वो बातें आ जाएगी। क्योंकि बहुत मुश्किल काम यह है कि अहंकार को खत्म करना। हम सब में सूक्ष्म ईगो भी है, उस सूक्ष्म ईगो को भी खत्म करना चाहिए। कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। तो बस हाँ, एक बात को भी समझ लो, एज यू बिकम सीनियर यू शुड नॉट बिकम सीरियस, है ना, एज यू बिकम सीनियर यू शुड बिकम मोर पोलाइट, मोर हम्बल, ह्यूमिलिटी जीवन में आनी चाहिए। और देखो सच्चा पुरुषार्थ क्या है, है ना, एक आप जैसा ही बड़ा अच्छा साधक था ना, उसको भाई जीवन का एसेंस समझना था। एक बहुत पहुंचे हुए गुरु थे, उनके पास गया, कहा कि मुझे जो अल्टीमेट बात आपकी है ना वो बता दो। गुरु ने कहा ऐसे ही थोड़ी अल्टीमेट बात बताऊंगा, अल्टीमेट जो मेरे ज्ञान का निचोड़ है वो तब बताऊंगा, देख यहां पर पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे तो कमरा बना के दे मुझे, एक अच्छा सा कमरा बना के दे, फिर उस कमरे में बैठ के मैं तुझे मेरी सारी साधना का जो अल्टीमेट निचोड़ है वो आपको बताऊंगा। उसने खूब मेहनत की, अच्छे से 3-4 महीना लगा करके एक पहाड़ी पे अच्छा सा कमरा बना दिया। गुरु वहां आए, यहां देखा ठीक नहीं, इसको तोड़ दे। उसने समझा शायद ठीक नहीं बना है, तो उसने तोड़ दिया। फिर से मेहनत की, फिर से अच्छा सा कमरा बनाया, फिर से गुरु आए, देखा, बोला इसको तोड़ दे। ऐसे 5 बार तक हुआ, लेकिन वो पक्का व्यक्ति था, उसने सोचा था कि नहीं मुझे ये आध्यात्मिकता का निचोड़ समझना ही है, बस वो अपनी मेहनत करता गया। 6th बार भी आया, सोचा कि भी गुरु का एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, हाँ एक भी उसके चेहरे की रेखाएं भी नहीं बदली कि बस मुझे जो प्राप्ति करनी है उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। 6th बार कमरा बनाया, ऐसे 10 बार उसने कमरे बनाए, गुरु ने क्या बोला जवाब ही नहीं देते हैं। जब 11वीं बार उसने ऐसा कमरा बनाया, पूरी मेहनत लगन से बिल्कुल निश्चिंत होके, तब भी गुरु आए और देखा तो क्या बोला होगा, हा तोड़ दे। 11वीं बार भी तब भी उसके चेहरे की रेखाएं नहीं बदली, उसने हथौड़ा उठाया तोड़ने गया तो गुरु भाग के उसको गले लग गए, कहा बेटे तेरी परीक्षा पूरी हो गई, इतना समय जो तूने मन को स्टेबल रख करके 11 बार यह कमरा बनाया, जरूर तूने अपने ईगो को खत्म कर दिया होगा। अगर तूने अपने अहंकार को पूरा खत्म नहीं किया होता तो तू इतना समय टिकता ही नहीं। मेरे पास बहुत शिष्य आए लेकिन इतना समय कोई टिका नहीं, थोड़ी देर में थोड़े डिस्टर्ब हो जाते थे, मैं उनको भगा देता था। तू इतना टिक गया उसका मतलब तूने अहंकार को खत्म कर दिया, अब तू तैयार है अल्टीमेट नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। और फिर गुरु ने उसे वो अल्टीमेट ज्ञान प्रदान किया। तो बस यही बात जीवन में भी है कि अहंकार को मार, थोड़ा भी कोई चीज हर्ट करती है तो पक्का समझ लो कि ये मेरा अहंकार है। और एक चीज देखो, आप सबने कहा ना हमको अल्टीमेट इंटेलिजेंस प्राप्त करनी है, तो और एक चीज करनी पड़ेगी, अभी करनी पड़ेगी। ईगो के लिए तो वापस जाके आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और वह है देखो दो चीजें हैं आज जो समस्या कर रही है ना, वो दो चीजें, एक तो बचपन से लेके अब तक आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया, आपके जीवन में कुछ अन्याय हुआ और कोई बाधा रूप बने, तो उस दुख को लेकर के हम घूम रहे हैं। कितने साल उस दर्द को लेकर के घूमना है, स्मशान घाट में ले जाना है नहीं, 10 साल तक लेके घूमना है। हाँ मैं आपको कोई विधि बताऊं कि अभी आपका वो दुख खत्म हो जाए तो सब तैयार है? अच्छा देखो थोड़े लोग तो तैयार है। और दूसरी बात है, दोनों साथ में कहा, दूसरी बात है कि आपके कारण कोई दुखी हुआ है, जैसे आपने बच्चों पर गुस्सा कर दिया है ना, आपने सबऑर्डिनेट को डांट दिया और उसका भी बोझ हमें अंदर में, एक बार तो गुस्सा आ गया लेकिन फिर लगता है अरे मैंने गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने इसके साथ बुरा व्यवहार किया, तो उस दुख को भी हम लेकर के घूम रहे है ना, उस बोझ को भी खत्म करना है, करना है। अच्छा, सब खड़े हो जाएंगे एक बार। अच्छा, डॉक्टर साहब चले गए, आइए एक जन यहां आ जाओ, हाँ कोई भी आइए, हाँ फटाफट आ जाओ स्टेज पे। भाई साहब कहाँ गए? हाँ जी, हाँ कहाँ जाओ, एक जन आइए आइए, हाँ हाँ आइए आ जाए, आइए स्टेज पे आइए। हाँ हाँ, एक एक पार्टनर बनाएंगे सब, बहने बहनों को बनाएगी, भाई भाइयों को बनाएंगे, एक एक ही व्यक्ति चाहिए, आइए आइए आप आ जाए, हाँ एक 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 ही, हाँ सभी एक एक पार्टनर बनाओ। हाँ देखो क्या नाम है,
एके जैन।
हाँ एके जैन मेरे पार्टनर है, हाँ आप सबके पार्टनर, वो घर में पार्टनर नहीं, यहां भी चाहिए। हाँ भले यहां भी पार्टनर बन जाओ वहां, ठीक है। हाँ ठीक, समझ गए, बहने बहनों को बनाएंगी, भाई भाइयों को बनाएंगी, या पति पत्नी है तो पार्टनर बन सकते, घर में भी पार्टनर यहां भी पार्टनर। हाँ अच्छा, अब क्या करना है पता है, हाँ अपने पार्टनर का चेहरा देखो और ये सोचो वो वही व्यक्ति है जो मेरे से नाराज है, ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने दुख दिया है, जिस पर मैंने गुस्सा किया है, और अभी उसको बोलो प्लीज मुझे माफ कर दो,
प्लीज फॉरगिव
मी। अच्छे से, ऐसा नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा नहीं है ना, अच्छे से बोलना पड़ेगा, बोलो प्लीज मुझे माफ कर दो,
प्लीज मुझे माफ कर दो,
मुझे अरे मुझे माफ कर दो, ऐसा भी नहीं, अच्छे से बोलना पड़ेगा, देखो अच्छे से बोलो अभी तीसरी बार फाइनल, प्लीज मुझे माफ कर दो,
प्लीज मुझे माफ,
अभी कुछ करो जिससे मालूम पड़े कि सामने वाले ने माफ कर दिया। मैं करके दिखाता हूं, सब मुझे फॉलो करेंगे, प्रॉमिस,
प्लीज मुझे माफ
करो, करो करो, गले मिलो, जब तक नहीं मिलेंगे छोड़ूंगा नहीं, बहनें नहीं मिलती है गले, मिलने को माफी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए माफी। अच्छा ओके, बैठिए, थैंक यू। हाँ यहां पर जो किया ना वो तो आर्टिफिशियल किया, वो रियल नहीं किया है ना, अब घर जाके रियल करना है, या तो अभी अभी भी करना है, यहां से जैसे प्रोग्राम, आप सबके पास मोबाइल है ना, मोबाइल निकालना, पत्नी को फोन करना, कल मैंने तुमको डांट लगाई थी प्लीज मुझे माफ कर दो, नहीं आप देखना पावरफुल रिस्पॉन्स मिलेगा। यहां पिछले 2 साल पहले यहां कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो एक रेलवे के ऑफिसर थे है ना, उन्होंने प्रोग्राम पूरा हुआ घर फोन किया, बोला प्लीज मुझे माफ कर दो, उनकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगी, सुती भी रोज तो मेरे से झगड़ा करते, ये ब्रह्मा कुमारी में क्या जादू हो गया, बोलते माफ कर दो, कल किया नहीं थे, अच्छा वेरी गुड, और कारण भी बताओ। हाँ भले फिर इंटरेक्ट भी करेंगे, भी क्यों आप माफी मांग रहे, बच्चों को भी बोलो बच्चे मैंने तुमको ऐसा किया था, देखो कल मैंने तुमको टाइम नहीं दिया था तो तुम मेरे से नाराज हो गए, प्लीज मुझे माफ कर दो, तो इसे कारण सहित कहो, सीनियर को भी कहो जूनियर को भी कहो, 99% अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 1% पॉसिबिलिटी है कि भी कुछ ना मिले, परंतु 99% आपको बेनिफिट मिलेगा, तो सब करेंगे ना, सब करेंगे, कौन कौन करेगा, चलो मैं ताली बजाता हूं, इतने सारे हैं, माफी में। अभी दूसरी, हाँ जी उस सामने वाले की, नहीं तो फिर बोले अगर 100% उसकी है, जैसे क्या दो हाथ से ताली बजती है तो 2-4% अपनी भी गलती होती है, लेकिन फिर भी आप देखो कि 110% उसकी गलती है तो भले नहीं मांगो, तो फिर उसको माफी मांगनी है ना, लेकिन जहां आपका 5% है, 2% भी आपका हिस्सा है, आप कहो तो सामने वाला भी कहेगा अरे अरे मेरी गलती थी, आप अगर कहेंगे तो सामने वाला कहेगा नहीं आपकी गलती नहीं थी, तो मेरी भूल थी, और तो हाँ मोस्टली हो नहीं सकती, हाँ ये हो नहीं सकती, हाँ तो भी अच्छा ही है ना, भी आपको फायदा होता है, अच्छा चलो टाइम कम है आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम इससे थोड़ा मुश्किल है कि जो आपको किसी ने दुख दिया है, है ना, किसी ने आपका विश्वासघात किया है और आप उस दर्द को लेकर के घूम रहे हैं, तो वहां पर अभी बहुत ही जरूरी चीज है कि माफ कर दो। हाँ, कई लोग कहते नहीं 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 नहीं, सारी दुनिया को माफ कर दूंगा, इसको माफ नहीं करूंगा। नहीं ना, आप माफ नहीं करेंगे तो दुख को दूसरे जन्म में भी लेके जाएंगे। क्यों? हाँ, ईगो की बात है। हाँ, आत्मा वो संस्कारों को ले जाती है, तो इसलिए है ना माफ कर दो। ग्रहम स्टील का नाम सुना है? नहीं सुना? उड़ीसा में एक पादरी थे, है ना, उनको और उनके बच्चों को जिंदा जला दिया गया था, हाँ, दारा सिंह। और एक साल के बाद उनकी पत्नी को पत्रकारों ने पूछा कि आपके पति और बच्चों के हत्यारों के बारे में तो आपके जीवन मन में क्या भाव है? तो देखो, उस महिला ने बहुत पावरफुल जवाब दिया। उसने कहा, जिस दिन ये हत्या हुई थी उसी दिन मैंने उन्हें माफ कर दिया था। बोलने में भी जबरदस्त शक्ति चाहिए। हमारा दुख तो इतना बड़ा नहीं है, तो हम क्यों ना माफ करें। कहते ना, टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, है ना। तो डिविनिटी को लाना है तो जरूर माफ कर दो, है ना। जिसे कहते हैं कि टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज टू फॉरगिव एवरीथिंग, और आप पूरा माफ कर देंगे तब ही असीम शांति हो सकती है। अल्टीमेट इंटेलिजेंस की बात है ना, क्योंकि अल्टीमेट शांति तब ही हो सकती है जब आप पूरी तरह से माफ कर दो। पर हम माफ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये फिर से पकड़ने वाली बात है कि भी भूतकाल को हम उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। कई लोग है ना, भूतकाल को सोच के दुखी होके होके उनको अच्छा लगता है, उनको शांति मिलती है, लगता है ना, सोलेस मिलता है, परंतु यह गलत है। भी भूतकाल से मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, बस जो प्राप्त करना है वो वर्तमान से करना है। इसलिए भी मैं पूरी तरह से सभी को माफ कर देता हूं। माफ कर दिया? किया माफ? हाथ हिलाओ, सबको माफ कर दिया। सोचो भी, जिन्होंने भी मुझे दुख दिया है सबको मैंने आज के दिन माफ कर दिया। और करते रहना, एक दिन में नहीं होगा ना, 8 सप्ताह तक करना पड़ेगा, तब सचमुच प्राप्ति होगी आपको। और हमने जब प्रॉब्लम आता है ना, तो कहते अरे भगवान मुझे ही क्यों प्रॉब्लम आया। हम लोग डायबिटीज का कैंप भी करते हैं, तो कहीं पेशेंट कहते अरे भगवान ने मुझे ही क्यों डायबिटीज दिया, पड़ोसी को नहीं दिया, मैं खाली मिला था क्या, है ना। तो हम क्या कहते हैं, वाई मी लॉर्ड, है ना। लेकिन क्या बोलना चाहिए, थोड़ा सा इंग्लिश जानते हैं ना, क्या बोलना चाहिए? बोलो जोर से, बोलो जोर से, जोर से आवाज में, हाँ, और जोर से, ट्राई मी लॉर्ड। हाँ, बोलो भगवान देखो मेरे में कितनी शक्ति है, मेरे में है शक्ति। और एक चीज सोचनी चाहिए, हम क्या कहते पता है, हाँ? भगवान को बोलते भगवान मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बच्चे पढ़ते नहीं है, पति गुस्सा करता है ना, किसी का सहयोग नहीं मिलता है, भगवान मेरा प्रॉब्लम कितना बड़ा है। परंतु ऐसा नहीं बोलो, है ना, भगवान को नहीं बोलो कि मेरा प्रॉब्लम कितना बड़ा है, प्रॉब्लम को बोलो मेरा भगवान कितना बड़ा है। कि भी मेरा भगवान इतना बड़ा है, प्रॉब्लम तू तो कुछ भी नहीं है, समझ गए? ओके, अब देखो पावरफुल चीज पर आते हैं। हाँ, एकदम अभी सब जाग जाओ, हाँ, कोई सो तो नहीं गए ना, हाँ, एकदम जाग जाओ, सीधे होके बैठो, थोड़े आगे झुक के बैठो। हाँ, अभी ध्यान से सुनो, हाँ, एकदम पावरफुल चीज पर हम आ रहे हैं, हाँ, बस ये आपने समझ ली ना तो सब समझ लिया। भले और कुछ भी आपने ध्यान से नहीं सुना हो, इस बात को ध्यान से सुना। और क्या है कि उस दिन भगवान आपको 10 बातें नहीं पूछेगा उस दिन, समझ गए उस दिन? हाँ, समझ गए ना कि नहीं समझे? कौन सी 10 बातें भगवान आपको नहीं पूछेगा? देखो ध्यान से देखना, सुनना, कुछ है तो लिख भी लो भले, तो बहुत अच्छा होगा। भगवान आपको ये नहीं पूछेगा कि आप कौन सी कार चला रहे थे। भगवान आपको ये पूछेगा कि आपने अपनी कार में कितने लोगों को चलाया, कितने लोगों को बिठाया। और देखो भगवान क्या नहीं पूछेगा, अच्छा आने फिर आपको दे दूंगा, अभी तो टाइम कम है, सुन लो ध्यान से, फिर आपको दे भी देंगे। दूसरी बात जो है कि भगवान क्या नहीं पूछेगा, हाँ कि भी आपके घर को आपने कैसे सजाया था। भगवान आपको यह पूछेगा कि आपने अपने घर में कितनों का स्वागत किया था। ठीक है, हाँ फील करो सब कुछ। बहनें सुन रही है, सुन रही है कि नहीं सुन रही है, जवाब नहीं देती मतलब। भगवान आपको यह नहीं पूछेगा कि आपके कबोर्ड में कितनी साड़ियां थी, किन भगवान आपको यह पूछेगा कि आपने कितने गरीब लोगों को साड़ियां दी। देखो भाई ताली बजाते क्योंकि बहनें साड़ियां गिनती रहती है। समझ गए, अभी साड़ियां गिनना बंद भी, और गरीबों को देखो भी, जिसके पास नहीं है बिचारे उनको सचमुच दो। अच्छा साड़ियां ही नहीं है अभी, ड्रेस पहनने लगे। ओके, और भगवान ये नहीं पूछेगा कि आपकी सैलरी कितनी थी, परंतु भगवान आपको ये पूछेगा कि आपने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया उस सैलरी को प्राप्त करने के लिए। पांचवी बात है, भगवान आपको ये नहीं पूछेगा कि आपकी पोस्ट कौन सी थी, कि आप जनरल मैनेजर थे, मैनेजर थे, कौन थे। भगवान आपको ये नहीं पूछेगा आपकी पोस्ट कौन सी थी, लेकिन भगवान आपको ये पूछेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था। है ना, भले झाड़ू का भी, झाड़ू लगाने का काम कर रहे थे, अच्छे से झाड़ू लगाया कि नहीं। छठी बात है, भगवान आपको ये नहीं पूछेगा कि आपको कितने मित्र थे, परंतु ये पूछेगा कि आप कितनों के मित्र थे। ठीक है, गुड। सातवां, भगवान आपको ये नहीं पूछेगा कि आपके पड़ोस में कितने लोग रहते थे, कैसे लोग रहते थे, परंतु भगवान ये पूछेगा कि पड़ोसियों के साथ आपने कैसा व्यवहार किया। आठवीं बात, भगवान ये आपको नहीं पूछेगा कि आपकी स्किन का कलर कैसा था, लेकिन भगवान आपको पूछेगा आपका कैरेक्टर कैसा था। भगवान आपको ये नहीं पूछेगा कि आपके पास कितना ग्राम सोना था, आपके पास कितना ग्राम गोल्ड था, परंतु भगवान ये पूछेगा कि गोल्डन एज में जाने के लिए आपने कितना पुरुषार्थ किया। समझ गए, अरे हाँ भी करना है, इसलिए बोला कि ध्यान से सुनो और यह सब करना है। देखो दसवीं फाइनल बात कि भगवान क्या नहीं पूछेगा, भगवान यह नहीं पूछेगा कि आपकी कितनी मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट थी, लेकिन भगवान यह पूछेगा आपकी स्पिरिचुअल अचीवमेंट कितनी थी। और बस सबको अच्छा लगा ये दस बातें। हाँ अब बोले चलो इस दस बात को भूल जाओ तो भी चलेगा, लेकिन एक बात को याद रखना, एक बात को याद रखना बस, भाई ये पक्का कर लो कि जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। बस भाई जो चीज राम को पसंद नहीं है वो मेरे काम की नहीं है। राम भी वो भगवान के लिए बोल रहे हैं, गांधी जी भी कहते थे ना कि भी मेरा राम तो निराकार है ना, गांधी जी कहते हैं दशरथ का बेटा मेरा राम नहीं है, मेरा राम तो वो निराकार है ना। तो इसलिए बस ये एक बात भी आपने समझ ली, बहुत कुछ हो गया। अब हम आते हैं कि भाई अल्टीमेट जो इंटेलिजेंस है क्या है। अल्टीमेट इंटेलिजेंस है कि सुप्रा कॉन्शियस को जगा दें। सुप्रा कॉन्शियस आत्मा का ही एक हिस्सा है, भल आत्मा ज्योति बिंदु है परंतु उसी का एक गहराई का हिस्सा है, जैसे एटम में होता है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऐसे आत्मा की एक फील्ड है सुप्रा कॉन्शियस जो सुपर इंटेलिजेंट है, जिसमें अनलिमिटेड पावर है, जिसमें इन्फिनिट ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है ना, कि भाई बड़े से बड़े पोस्ट पर आप क्यों ना हो, आप में शायद तो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी नहीं होगी जो सुप्रा कॉन्शियस है। और सुप्रा कॉन्शियस में अखूट शांति और आनंद का भंडार समाया हुआ है ना, कि जो आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि कितनी कितना आनंद मिले, कितनी शांति मिले, उतना सुप्रा कॉन्शियस में है। अब वह कहां है देखो, कि अगर इसको हम आत्मा के रूप में ले, बल आत्मा है तो अणु के समान, परंतु इस रूप में अगर आप आत्मा को समझते हैं तो सबसे बाहर है कॉन्शियस, जिसके बारे में आप जागृत हो, थोड़ा डीप में जाएंगे सब कॉन्शियस, थोड़े ही जागृत है, और डीप में जाएंगे अनकॉन्शियस, कि जिसके बारे में जागृत नहीं, पूर्व जन्म की मेमोरीज भी वहां पर है, और उससे भी डीपेस्ट पॉइंट है सुप्रा कॉन्शियस। कई लोग पूछते हैं कि भी अनकॉन्शियस से भी उसको बोलते हो सुप्रा कॉन्शियस, लेकिन अनकॉन्शियस के भी अंदर क्यों डाला? क्योंकि सुप्रा कॉन्शियस तक पहुंचना है तो अनकॉन्शियस को भी पार करके जाना पड़ेगा, इसलिए उसको डीपेस्ट लेवल पर डाला, और उसमें वह सारी शक्तियां है ना, सारा पावर है। ये डीपेस्ट चीज, जैसे कहते हैं ना कि मोती, कीमती मोती चाहिए तो समुद्र के तले में जाना पड़ेगा, तो ऐसे ही आत्मा की भी गहराई में जाना पड़ेगा, तब सुप्रा कॉन्शियस में जो अद्भुत शक्तियां है वह प्राप्त होगी। और इसका सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन में लक्ष्य है कि देह और देह की दुनिया से परे हमें चले जाए। अब तक जो आप कर रहे हैं ना तो ऊपर ऊपर ही है, सतमुच इसे डीप स्टेज में जाना है कि जहां पर टोटली अपनी सुध-बुध को खो जाए, देह और देह की दुनिया का आपको भान ही न रहे, ऐसी अवस्था में सुप्रा कॉन्शियस की शक्तियां जो है वह जागृत होती है। और अभी अल्टीमेट इंटेलिजेंस को करना क्या है, स्पिरिचुअलिटी करती क्या है ना, कि भाई सफरिंग को सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट कर देती है। ये करो, भले आपके सामने प्रॉब्लम है, बॉस अच्छा नहीं है, लेकिन ये सोचो कि मैं बेस्ट करके बताऊंगा, ये डिफिकल्ट बॉस को भी मैंने कन्विंस कर दिया, मेरे प्रति अच्छा भाव आ गया, आई एम ग्रेट, है ना। तो ऐसे सफरिंग को सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट कर देता है वो, ना वो साथ साथ सफरिंग को सेल्फ रियलाइजेशन में भी कन्वर्ट कर देता। एक मनोचिकित्सक होने के नाते मैंने अभ्यास के भी अध्यात्म की ओर कौन जुड़ते, दो प्रकार, एक तो जिनको कुछ कोई प्रॉब्लम है, और दूसरे भाई सब ऐसे नहीं होते, ये भी नहीं सोचे ना, कई लोग कहते हैं जो भी आते हैं ना सबको प्रॉब्लम, कि सचमुच 25-30% ऐसे भी लोग हैं कि जो सत्य की खोज करना चाहते हैं। और बस इस कॉन्फ्रेंस में मेरी आपको एक ही राय है, आप लोग शायद हमारी सभी बातों से सहमत नहीं भी हुए होंगे ना, मानता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नया ज्ञान है ना, कोई बात नहीं, लेकिन बस एक मैसेज भी आप इस कॉन्फ्रेंस से लेके जाओ कि सत्य की खोज करनी है बस, और थोड़ा अभ्यास करना है, और प्रैक्टिस करूं, और भले कुछ पढ़ूं, और सत्य को खोजना है ना, अल्टीमेट वह परमात्मा को मुझे प्राप्त करना है। और अभी चार दिन पहले मुरली में बहुत अच्छी बात आई थी, आप जाएंगे ना, एक मुरली होती है उसको जरूर सुन, पहले तो कोर्स करना और थोड़ा सा, काफी तो आपका कोर्स हो गया है, और चार पांच दिन में आप जहां से भी आए अगर जाएंगे और कुछ थोड़ी सी आपको मेडिटेशन की बातें बता के फिर मुरली भी आप सुनना। चार दिन पहले मुरली में बहुत अच्छी बात यह थी कि भी अल्टीमेट बात वह है कि जो परमात्मा को अपना पिता मान करके उनके साथ वैसा संबंध निभाए, सचमुच ही अभी हम कहते हैं भी परमात्मा पिता है, परंतु जब जरूरत है तब, मैं हमेशा कहता हूं कि है ना, आप सब मंदिर में जाते हैं, जाते हैं मंदिर में, हाँ देखो जो मंदिर में जाते हैं, चर्च में, गुरुद्वारे में, सब आ गया, कि उनका ना भगवान से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक तो मेरा काम हो जाए, है ना, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मेरे बेटे को मेडिकल में एडमिशन मिल जाए, है ना। जैसे आज देखो, मैंने देखा भी है कि भी आज आप हनुमान के मंदिर में जाते हैं, कल आपको कोई कहे कि नहीं नहीं वो कालिका के मंदिर में जा, तेरा काम हो जाएगा, तो हनुमान जी को छुट्टी, दूसरे दिन से काली मां के मंदिर में, है ना, यह सही नहीं है। अल्टीमेट तो एक ही है ना, कहेंगे कि भी परमात्मा तो एक है, ये देवी देवता है वो तो मीडियम्स है ना, वह माध्यम है परमात्मा की शक्ति को हमारे तक पहुंचाने के, भले माध्यम कोई भी हो, है ना भाई। कॉपर के नल से पानी आता है कि स्टील के नल से आता है या सोने के नल से आता है, पानी तो पानी है ना। तो भाई ये सभी वो माध्यम है अलग अलग, सोर्स तो वही परमात्मा है बस, तो उस वहां तक पहुंचना है बस वहां तक, और उसका थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा, और कोशिश करो दोबारा भी आओ, भले दोबारा भी आएंगे, थोड़े ही लोग हाथ उठा रहे हैं। अच्छा हाँ, जरूर जरूर, देखो बोले जाओ, कोई हर्जा नहीं, ये नहीं बोलता हूं कि भाई कोई गलत है, मंदिर चर्च गुरुद्वार में जाना अच्छा ही है ना, उसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन तब लक्ष्य रखो कि वो सत्य तक पहुंचना, और नहीं भी जाओ तो भी हर्जा नहीं। कोई जो एजुकेटेड लोग है समझते नहीं जाना है, भले नहीं, अपने घर में भी रहो लेकिन अच्छे से वो सत्य की खोज करनी है ना, एकांत में 15-20 मिनट भी बैठो, अच्छे से ध्यान को करो, एक्सपेरिमेंट करो अलग अलग चीजों के, सत्य तक आप पहुंच जाएंगे। ओके, अब देखो अल्टीमेट इंटेलिजेंस प्राप्त करें तो इन तीन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से अगर मिल जाए, वो तीन है, हु एम आई, देखो लिखना हो तो लिखो भी, हु एम आई, हाउ एम आई एंड वेयर एम आई। हु एम आई का उत्तर मिल गया, मिला, हु आर यू, मैं आत्मा हूं। फिर है हाउ एम आई, आत्मा कैसी है, हम बड़ा देखो सिंपल बताता हूं, साइंटिफिकली आप समझ जाएंगे, अब तक ना भी समझे हो जो लोग, ये छोटी सी बात से आप साइंटिफिकली इस बात को समझ जाएंगे। आत्मा इस विश्व में सबसे मूल चीज है ना, मूल तत्व है तो आत्मा है, सब एग्री करेंगे। दूसरा है आत्मा सबसे तेज है, फास्टेस्ट कोई चीज है तो आत्मा है। और तीसरा, आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब आत्मा में समाया हुआ है ना, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। अब देखो इस तीन बातों को एग्री करते हो सब, बीस पर सोचो भी, मैथमेटिक्स में सबसे मूल चीज क्या है, मैथ्स का शुरुआत कहां से हुआ, जीरो से, डॉट से, तो आत्मा भी एक डॉट है, अणु के समान है। सबसे हाईएस्ट स्पीड किसकी है, आवाज से भी ज्यादा फास्ट क्या होता है, लाइट, तो आत्मा एक स्पिरिचुअल लाइट है। कौन से रंग में सब रंग समाए हैं, वाइट, तो आत्मा सफेद प्रकाश का डॉट है, हो गया करी तो पक्का। हाउ एम आई, आई एम दैट लाइट, है ना, मैं वह दिव्य प्रकाश हूं, ये शरीर केवल साधन है। ऐसे कहीं जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, आत्मा भी कपड़े बदलती है, परंतु मैं आत्मा वह कायम हूं। बस ये बात को अच्छे से समझ लेंगे तो भी आप स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बन जाएंगे। अब देखो भी अल्टीमेट इंटेलिजेंस में करना क्या पड़ेगा पता है, कि भी हमारे दो ब्रेन हैं, सिंपल भाषा में समझाता हूं, एक अंदर का ब्रेन, एक ऊपर का ब्रेन, ऊपर मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो साइंस को समझते हैं, अंदर है थैलेमस हाइपोथैलेमस, तो रियल पावर है ना ये अंदर के ब्रेन में, ऊपर का ब्रेन है ना वो डिस्टर्ब करता है बीच बीच में, बीच में दखल डालता है, और ऊपर का ब्रेन है ना वो लॉजिकली सोचता है कि अरे ये सब बकवास है, ये होने वाला नहीं है, यहां से निकलेंगे सोचेंगे अरे सुन लिया ये टकलू डॉक्टर ऐसे ही बोल रहा है, ये कुछ होने वाला नहीं है, तो ऊपर का ब्रेन आपको बोलेगा सब नहीं कर, है ना, नीचे तक गए तो सोचेंगे अरे चार दिन सिगरेट नहीं पी अभी शुरू कर दे, तो वो ऊपर का ब्रेन नीचे के ब्रेन को डिस्टर्ब करता है। अल्टीमेट इंटेलिजेंस प्राप्त करनी है तो ऊपर के ब्रेन को कट ऑफ कर दो, मतलब क्या मालूम है कि भी लॉजिक को खत्म कर दो, चाहिए भी परंतु भाई ज्यादा बीच में खिटपिट नहीं चाहिए, ज्यादा तर्क नहीं है ना, ज्यादा वो नहीं। फेथ भी कोई पावरफुल चीज होती है ना। तो एक फीलिंग्स फेथ वो भी बहुत ही जरूरी है। और वो करना हो ना भी सचमुच ये ऊपर के ब्रेन को स्टॉप करना है सबको, है ना, तो कुछ है ना पैब से बोलना पड़ेगा, पैब से करना पड़ेगा। पैब मतलब पैग नहीं पैब मतलब पी का मतलब है पावर, ई का मतलब है इमोशंस, और बी का मतलब है ब्लिस मतलब आनंद, है ना। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा पावर से, इमोशन से, ब्लिस से। सब करेंगे, एक बार खड़े हो जाओ। देखो इंग्लिश में है लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा तो इंग्लिश जानते हैं ना सब, है ना। हाँ, अब देखो कुछ ऐसे करना है पावर से करना, यही बात क्या है। हाँ, आई एम अनलिमिटेड बीइंग, एक्सेप्टिंग फ्रॉम अनलिमिटेड सोर्स इन एन अनलिमिटेड वे। अभी तो अच्छा नहीं किया, देखो पैप से बोला ना, पावर से होना चाहिए। कैसे मालूम है, एक देखो हो सकता है, आई एम अनलिमिटेड बींग, आई एम अनलिमिटेड बींग, आई एम अनलिमिटेड बींग। करो करो, कोई नहीं कर रहा है। देखो अभी थोड़े लोगों को ही अल्टीमेट इंटेलिजेंस मिलने वाली है, सबको नहीं मिलेगी। करो करो, कुछ भी करो, मैंने बोला ऊपर का ब्रेन का सुनना नहीं है, थोड़ा आधा पागलपन चाहिए। कुछ अचीव करना है जीवन में तो बच्चे जैसा बनना पड़ेगा। हाँ, क्या कुछ करो ऐसा तो बोलो, आई एम अनलिमिटेड बींग, आई एम अनलिमिटेड बींग, आई एम अन, देखा भी थोड़ा थोड़ा करने लगे, आई एम अनलिमिटेड बींग। नहीं तो ऐसा भी, आई एम अनलिमिटेड बींग, है ना। एक्सेप्टिंग फ्रॉम अनलिमिटेड सोर्स इन अनलिमिटेड वे। देखो जो ऐसे ही खड़े हैं ना उनको कुछ नहीं मिलेगा, है ना, कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ओके, ओम शांति, बैठ सकते। तो ये रियल है सचमुच डीप, जो भी इंपैक्ट, फिर साइकोलॉजी का भी यहीं पर निचोड़ है। और अब इसके लिए करना कि अभी प्रॉब्लम कहां है पता है, कि हमने जो लेबल लगा दिए ना उसको हम हटाते ही नहीं। अगर आप इंजीनियर है अभी तो आपको कोई पूछेगा आप कौन है, तो आप कहेंगे मैं इंजीनियर हूं। रिटायर होने के बाद बोलेंगे मैं एक्स इंजीनियर हूं। मरने के बाद बोलेंगे वो लेट इंजीनियर था। तो बस वो लेबल चलता ही है। हाँ, ये लेबल को हटा दो। क्या लेबल की भी, मैं शांत स्वरूप आत्मा, बस मेरे में सब कुछ है, दैट इज माय थिंग, और को बस वो एक मिल गया, सब कुछ मिल गया जीवन। अब इसके लिए अल्टीमेट इंटेलिजेंस के लिए ना आपको क्या करना, अपग्रेड करना। पहले पेंटियम 2 था ना शुरू में, तो फिर अपग्रेड करना पड़ा पेंटियम 3, पेंटियम 4। तो ऐसे ही आपको यहां पर क्यों बुलाया पता है, आपके पुराने कंप्यूटर को अपग्रेड करने के लिए, मदरबोर्ड को अपग्रेड करना है। अभी हुआ अपग्रेड, है ना, और भी करना है। और सोचो कि रियल प्रोसेस है, हमें अपने जो साइकोलॉजिकल मदरबोर्ड है उसको अपग्रेड करना है हमें। सबके पास मोबाइल है, निकालो मोबाइल। अच्छा, अभी उसमें से सिम कार्ड निकाल दो, अभी नहीं निकालो भले टाइम लगेगा। अगर सिम कार्ड निकाल दे और मैं आपको फोन करूं तो क्या मैसेज आएगा, नॉट अवेलेबल। तो बस आत्मा ही वो सिम कार्ड जैसी है, है ना, आत्मा चली गई तो नॉट अवेलेबल। तो बस सोचो, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कई लोग कहते हैं ना अभी फोन घूम ही गया ना, कहते बोले ले जाओ लेकिन सिम कार्ड वापस दे दो, भी उसमें बहुत डाटा है, फोन तो हम नया खरीद लेंगे। तो ऐसे आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट है। और बर्थ एंड डेथ क्या है भाई, नहीं ये चीजें आप समझ जाएंगे ना अच्छे से तो ऑटोमेटिक वो बातें जीवन में आएगी, आप स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बन जाएंगे। कि बर्थ एंड डेथ वो सिर्फ डोर्स है कि भी मैं यहां से आया यहां से गया, तो ऐसे ये वर्ल्ड ड्रामा में एंट्री और एग्जिट है और कुछ भी नहीं। बस वो पक्का आपका हो जाए कि भी मैं अपनी एक्टिंग कर रहा हूं, बेस्ट वे में मुझे अपनी एक्टिंग को करना है। अब जो अल्टीमेट जो हमको चाहिए, अगर पुरानी एक वर्कशॉप में मैं करवाता भी मेरे सेशंस में कि आपको क्या चाहिए, सबको पूछे और अंत में अगर हम उसका निचोड़ करें ना तो यही आएगा कि हमको सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, है ना, प्रेम चाहिए, बस यही बातें। तो ये सब है ही आत्मा में, तो वहां क्यों ना पुरुषार्थ करे। और यह भी साइंस है, यह कोई सिर्फ धर्म नहीं है। देखो सोल का अर्थ क्या है पता है, SOUL, सोल मतलब सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, और गॉड का अर्थ क्या है, जनरेटर ऑफ डिविनिटी। तो बस यह सही अर्थ से आप पुरुषार्थ करो, सब कुछ हो जाएगा। और अल्टीमेट इंटेलिजेंस क्या है पता है, खुदा को जानना है, बोला ना, सत्य को पहचानो। तो कहते हैं खुदा को जानने के लिए खुद को पाना होगा, खुदा को जानने के लिए खुद को पाना होगा, और खुद को पाने के लिए खुदा को आना होगा। हमको तो पता ही नहीं हम कौन है, है ना, खुदा स्वयं आएगा, मतलब सेम चीज है। एक बार मैंने बोला तो कहते आप खुदा किसको बोलते हैं, हाँ भाई भगवान अल्लाह गॉड सब एक ही है भाई, वो परमपिता परमात्मा को आना पड़ेगा, है ना, और आ गया है, ज्ञान दे रहा है ना, अच्छे से पुरुषार्थ करके उसको समझो। और ये जो आत्मा के गुण हैं, उन गुणों को हमें टोटली अच्छे से पुरुषार्थ करके उन गुणों को अनुभव करना है। और है कहां पता है, देखो अभी इंटेलिजेंसी क्या है, रामभिया एक सूफी संत थी, और सूफी संत थे ना वो लेक्चरबाजी नहीं करते थे हमारी तरह, हाँ वो प्रैक्टिकली करके समझाते थे। हाँ तो एक दिन, दिन को 3 बजे का समय था, रामभिया अपनी कुटिया के बाहर आकर के कुछ ढूंढ रही थी, तो रास्ते से एक व्यक्ति आया, उसने कहा रामभिया क्या गुम हो गया है, उसने कहा मेरी सुई गुम हो गई है, ढूंढ रही हूं, तो वो भी ढूंढने लगा। दूसरा व्यक्ति आया, कहा क्या ढूंढ रहे, कहते रामभिया की सुई गुम हो गई, ढूंढने लगे। 7-8 लोग यहां वहां ढूंढ रहे थे। फिर एक व्यक्ति आया, थोड़ा आप जैसा समझदार था, उसने कहा रामभिया आप ये सुई को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये तो बताओ कि सुई गिरी कहां थी। उसने कहा गिरी, सुई गिरी तो कुटिया के अंदर थी, तो फिर यहां क्यों ढूंढ रहे हो। उसने कहा यहां प्रकाश है, वहां अंधेरा है, इसलिए यहां ढूंढ रही है। देखो हमारी भी हालत ऐसी है कि जो दिखाई दे रहा है ना, भी आपको दिखाई दे रहा है कि भी बड़ी कार आ जाएगी तो मैं सुखी बन जाऊंगा, चलो मेहनत करो, भागा दौड़ी करो, लेकिन बड़ी कार खरीद लो ना। आपको आया कि भी अरे और 4 बेडरूम का फ्लैट हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ज्यादा स्पेस हो जाएगा, आराम से रहेंगे, और करप्शन किया, उल्टा सीधा किया, लेकिन 4 बेडरूम का फ्लैट लेना ना, क्योंकि वो दिखाई दे लेकिन वहां शांति नहीं है। वो स्रोत तो अंदर है, वो सुपरा कॉन्शियस में, समझे ना। अभी देखो मैं आपको बताता हूं पिक्चर से भी कि वो सोर्स सचमुच कहां पर है, आगे आएंगे। अब मेडिटेशन बड़ा सिंपल है, ये 5 शब्दों को समझ लो आप अच्छा ध्यान करने लगेंगे। वो 5 शब्द है इंटरनलाइज, दूसरा है चैनलाइज, तीसरा है विजुअलाइज, चौथा डिविनाइज, और 5वां है रियलाइज। बस है ना, अंतर्मुखी बनना है, फिर विचारों को मोड़ना है, उसी का चित्र भी निर्माण करना है, विजुअलाइज करना है, उसमें दिव्यता को भी भरना है ना। कई लोग पूछते भी आत्मा परमात्मा के बिगर योग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो डिविनिटी नहीं आएगी जब तक दिव्यता नहीं है, वो योग नहीं है। और डिविनाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक रियलाइज भी करेंगे। थक तो नहीं गए ना सब, हाँ कि भी पिकनिक पे जाने का याद आता है, साइट सीइंग देखने का याद आ रहा है। अच्छा हाँ देखो थोड़ा सा अभी आपको करवाता हूं, प्रैक्टिकली हो जाएगा, थोड़ी देर बैठेंगे ना सब। अच्छा आप देखो कि भी सचमुच ये सोर्स कहां है, कि भी जो सोर्स है वो सेंटर में है, और उसके आसपास कॉन्फ्लिक्ट्स है, जैसे वेस्ट थॉट है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स है, उनको तोड़ना पड़ेगा, तब वो अंदर की जो सचमुच शांति है, ऊर्जा है, वह बाहर आएगी। और कैसे आएगी देखो, हाँ नेक्स्ट, आप ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ करेंगे, जो और भी बातें आपने सभी सत्रों में सुनी है उसको प्रैक्टिकली अगर थोड़े दिन अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि भी वो वेस्ट थॉट कम होने लगेंगे, कॉन्फ्लिक्ट कम होने लगेंगे, ब्लॉक्स खत्म होने लगेंगे, तो अंदर की शांति है वह बाहर आने लगेगी। अभी भी जो आपको शांति मिल रही है क्योंकि थोड़े से वेस्ट थॉट खत्म हुए इस वातावरण में आके भी, इसके कारण सुख का अनुभव कर रहे हो, आनंद का अनुभव कर रहे हो। और एक काम कर, अभी तो समय नहीं है लेकिन तो भी आपको एक गाइडेंस देता हूं कि ये जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो झाड़ की तरह, आज जो भी आप हो, आप में अच्छाई भी है बुराई भी है, वो एक झाड़ की डाल डाली है और उसका मूल है ना एक मान्यता में होता है। सिर्फ एक उदाहरण आपको देता हूं, एक लड़की को मेरे पास उसके माता पिता ले आए, वो इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमिस्टर में 4 बार फेल हुई। ब्रिलियंट लड़की, अचानक क्यों फेल होने लगी ना, मां बाप को आश्चर्य हुआ कि हम इतना, उसकी मां भी टीचर थी। तो फिर ये सारा प्रोसेस होता है, हमने वो पूरा साइकोथेरेपी का प्रोसेस किया तो उसमें ये बात उसकी सामने आई है, उसके सामने ये सब प्रॉब्लम्स थे, भूल जाती थी, एंजाइटी होती थी, कंसंट्रेशन नहीं था, फेल हो रही थी, गुस्सा आ रहा था, ये सब था। जब वो प्रोसेस को किया तो पता चला उसका जो मूल ये था कि मुझे कोई समझता नहीं है, नो वन अंडरस्टैंड्स मी, और हमने उसको दूर किया। ये जो उसका ब्लॉक था वो अलग अलग तरीके से दूर किया। एक सिंपल चीज, उसकी मां ने उसको एटीएम कार्ड दे दिया था। मैंने उसको पूछा, बेटे दुनिया में कितने आपकी जैसी लड़कियां हैं जिसको मां बाप ने एटीएम कार्ड दे दिया है, चाहिए उतने पैसे निकालो, कोई पूछने वाला नहीं। का एक भी नहीं है मेरे क्लास में, तो इट मीन्स पेरेंट्स का आप पर फेथ है, नहीं तो ये नहीं करते है ना। इसी कुछ और बातें भी उसको समझाई, और उसकी जब ये जो ब्लॉक था वो दूर हो गया कि नहीं नहीं मेरे मां बाप मुझे समझते हैं, दे आर गुड, उसी साल पास हो गई ना। मां बाप भी बोलने लगे, क्या जादू किया आपने, कोई जादू नहीं किया, उसका वो ब्लॉक दूर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होने लगा, मेमोरी अच्छी हो गई, ध्यान से पढ़ने लगी, पास हो गई। तो बस ऐसे हम सबको, ये तो एक उदाहरण है लेकिन हम सब में ऐसे कोई ना कोई ब्लॉक्स है बचपन से, उसको दूर करना वह सही एफर्ट है। और एक उदाहरण, एक डिटेल में नहीं जाता हूं, टाइम कम है, मैं आपको ध्यान का अभ्यास भी कराना चाहता हूं। अच्छा, अब देखो कि भी हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी है, आज आप देखेंगे सारे ब्लॉक्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, प्रॉब्लम्स है। आप रिलैक्सेशन आदि करते हो उससे भले वो कम होते लेकिन पूरे खत्म नहीं होते, पूरे ब्लॉक्स जो खत्म होते हैं ना वो मेडिटेशन से खत्म होते। योग की विधि रेगुलरली कुछ समय तक करे तो वह जो सारे ब्लॉक्स करके कंप्लीटली हम क्लीन बन सकते हैं ना। आप सबको कंप्लीटली क्लीन बनना है, आत्मा को क्लीन बनाना है, बोलते नहीं है तो नहीं बनना है कि देरी हो गई। देखो अभी आप सबका ऑपरेशन करता हूं, मैं डॉक्टर हूं ना, ऑपरेशन करे सबका, आत्मा का ऑपरेशन, तैयार है सब? देखो एक बार खड़े हो जाओ, थक गए होंगे ना, अभी मेडिटेशन करना है। देखो अच्छा अच्छा, हाँ पूरा नेगेटिविटी को खत्म कर दो, गया गया गया, टेंशन गया 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 गया, टेंशन गया, भागो 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 भागो, गया गया गया, टेंशन गया, नीचे भी डाल दो, टेंशन गया, टेंशन गया, थकावट गई, थकावट गई, बोलो बोलो, थकावट, थकावट गई, बस वेरी गुड। हाँ ऊपर डालो या नीचे डालो, बाजू वाले पे नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं डालना, फ्रेश हो गए। अच्छा चलो बैठिए, तो थोड़ी देर योग, हाँ माचा वो भी और भी है, टाइम नहीं है, नहीं तो और भी कराते। हाँ अभी समय कम है, पूरा करना है। अच्छा भले बैठ सकते हैं, हाँ योग करना है, अभी ऑपरेशन करना है ना, नजदीक आ जाओ, जो पीछे बैठे आगे आगे आ जाओ, फटाफट नजदीक आओ जितना पॉसिबल हो, मैं भी बैठ जाऊंगा। हाँ कमर को सीधी रखो, ये सिंपल टेक्निक है, अभी तक कौन है जिनका योग नहीं लगा? तीन दिन में योग नहीं लगा, योग में अनुभव नहीं हुआ, देखो अभी हो जाएगा, आप अच्छे से करना, पूछूंगा अभी आपका हो जाएगा। हाँ, कमर को सीधी रख के बैठिए, मुझे माइक दे दें। कमर को सीधी रखनी, अंदर बैठिए, जितना कुर्सी के अंदर बैठ सकते बैठिए, दोनों पैरों को जमीन पे रखेंगे, थोड़े अंतर पे तो और भी अच्छा है। हाँ, हाथों को ऐसे मोड़ लीजिए, और यह सरल सी बहुत ही अच्छी विधि है, बल आगे चल के जरूरत नहीं है, एक बार आप अच्छा ध्यान करने लगो, मैं जो टेक्निक का आज करवाऊंगा उसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु शुरू में आपको यह बहुत मदद कर सकती है, और इसमें जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे ही आप सोचना, वैसा ही चित्र निर्माण करना, वैसे ही सचमुच फील करना, आप देखेंगे पूरा आपको बहुत अच्छा योग लगेगा, आपका ऑपरेशन हो जाएगा, सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। बल राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से किया जाता है, परंतु आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं, और आपको बस यह सोचो कि आप अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में चले जाइए, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं, एकदम हल्के होकर के बैठे हैं। एक बलून के अंदर आप बैठे हैं, अब यह बलून आपको सुरक्षित ऊपर ले जाएगा, एकदम सुरक्षित रीति से यह बलून आपको ऊपर ले जा रहा है, धीरे धीरे आप ऊपर जा रहे हैं, 20 फीट 25 फीट ऊपर जा रहे हैं। देखिए आसपास का वातावरण कैसा दिखाई देता है, और ऊपर जा रहा है तो नीचे के लोग छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ऐसे ही मन की स्थिति को ऊपर उठा ले तो परिस्थितियां छोटी दिखाई देगी, इसके लिए सोचिए कि यह सृष्टि एक बहुत बड़ी सीरियल है, उसमें मैं एक्टर के रूप में अपना पार्ट बजा रहा हूं, बस मैं एक एक्टर हूं, और यह बलून ऊपर जा रहा है, एकदम ऊपर चला गया है तो नीचे के लोग दिखाई देने ही बंद हो जाते हैं। ऐसे ही हम मन की स्थिति को ऊपर उठा ले तो तनाव मुक्त हो जाते हैं। इसके लिए सोचिए कि मैं तो बस एक आत्मा हूं, यह शरीर साधन मात्र है, मस्तिष्क के मध्य में दिव्य ज्योति का चित्र निर्माण करें, मैं वह दिव्य ज्योति हूं। जैसे ये भाव आता है एकदम हल्कापन लग रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, ऐसे आनंद की स्थिति में यह बलून माउंट आबू की ओर आ रहा है। बस उड़ते उड़ते अति इंद्रिय आनंद में माउंट आबू की ओर आप आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, अति इंद्रिय आनंद का अनुभव हो रहा है। उड़ते रहिए, उड़ते उड़ते माउंट आबू की ओर आ गए हैं। आप इन अरावल्लई की पहाड़ियों में घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस बड़े मुक्त होकर के इस अरावल्ली की पहाड़ियों में घूम रहे हैं। आप देखते हैं दूर से आपको ब्रह्मा बाबा दिखाई देते हैं, श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा बाबा को आप देखते हैं। बस उनमें प्रकाश ही प्रकाश है, चेहरे पे एकदम शांति है। को देख के आप समझते हैं कि भी इनसे ही मुझे संपूर्ण शांति मिल जाएगी, जीवन के रहस्य को मैं समझ लूंगा। आप उन बाबा के पास जाते हैं और अपने मन की बात बताते हैं कि मुझे योग का गहरा अनुभव करना है, पूरा आत्मा को सभी नेगेटिविटी से समाप्त कर देना है। तो बाबा अपना वरद हस्त आपके सर पे रखते हैं, एकदम आपको वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। ब्रह्मा बाबा का वरद हस्त आपके सर पर है, आपको अनेक वरदान मिल रहे हैं। रोम रोम में वह वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। फिर बाबा आपको इशारा करते हैं कि मैं आपको अल्टीमेट सत्य की ओर ले जाता हूं। वो इशारा करते आप उनके पीछे पीछे जाते हैं। बाबा एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश करते हैं, आप भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। जैसे जैसे आप उस गुफा में अंदर जाते हैं, बहुत गहराई में जा रहे हैं, लगता है जैसे जैसे अंदर जाता हूं पूरा मेरा भूतकाल पीछे छूट जाता है। जीवन में जो भी बुरी घटनाएं हुई है सब पीछे रह जाती है, मेरे अवगुण सब पीछे रह जाते हैं और मैं गहराई में जा रहा हूं, एकदम गहराई में जा रहे। आप अंतिम गहराई में जाते हैं तो देखते हैं अंदर बहुत बड़ा कमरा है, इससे भी बड़ा कमरा है। वहां सामने शिव बाबा की ज्योत जगमगा रही है, बहुत ही आकर्षक अत्यंत दिव्य ज्योत जगमगा रही है। बस उससे किरणें निकल करके आप पर पड़ रही है। बस आत्मा में वह किरणें समा रही है, भरपूरता का अनुभव करता हूं। और और सारी बुराइयां दूर दूर जा रही है। सामने से सारी शक्तियां आ रही है और पीछे से सारी कमजोरियां दूर दूर जा रही है। बस मैं भरपूर हो रहा हूं, पूरी तरह से शुद्ध हो रहा हूं। एकदम शुद्ध होकर के हल्का हो गया और वापस आ रहा हूं, गुफा से बाहर आता हूं वापस। धीरे धीरे बाबा भी पास साथ साथ वापस आते हैं। बाहर आके आप बाबा का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे इतना अच्छा अनुभव कराया, मेरे जन्म जन्मांतर की सारी अशुद्धियों को समाप्त कर दिया। और बाबा को फिर से मिलने का वादा करके आप वापस आ रहे हैं। बलून में बैठ के एकदम अच्छा लगता है, आहा बस सच्ची राह मिल गई, वापस आ रहे, एकदम वापस आते जाते हैं। वापस अपने स्थान पे आ गए हैं, एकदम भरपूर हो गए, शांत हो गए। धीरे से आंखें खोलिए, जागृत होते हैं, एकदम फ्रेशनेस का अनुभव होता है, ताजगी का अनुभव होता है। ओम शांत। कैसा लगा? हाँ, किसको बहुत 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 अच्छा लगा? सबको, सबको नहीं लगा, सबको थोड़ी अच्छा लगा, सब बैठा तो सबको। हाँ चलो, जिसको बहुत 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 अच्छा लगा वो खड़े हो जाएंगे, सबको नहीं होना है। अच्छा यहाँ जाओ, जिनको बहुत 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 अच्छा लगा इधर आइए, आइए देखो आपको इनाम देंगे। इधर आइए, आइए जिनको बहुत 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 अच्छा, सबको नहीं आना है। अच्छा सचमुच अच्छा लगा,
बहुत अच्छा।
अच्छा अभी देखो, अभी ना अब तक मैंने आपको सिखाया ना, अभी आप बोलो आपने क्या किया, अभी क्या करना है, आपको यहाँ क्यों बुलाया, ऐसे जानना नहीं कि भी आपने सारे प्रोसेस में क्या चिंतन किया, क्या सोचा और आपको क्या फीलिंग हुई, शॉर्ट में बताओ। देंगे टाइम हुआ है लेकिन बस दो चार लोगों का ही सुनेंगे, लोगों को देख के बोलो भले।
मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अपना दूसरी दुनिया में मैं जा रहा हूं और मेरे जो जितना भी टेंशन है और मेरा जितना एंगर और नेगेटिविटीज जो है वो मेरा पीछे छोड़ दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली मैं ये दुनिया से वो दुनिया में गया तो इस दुनिया का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। मैं यहाँ जितना यहाँ के मतलब मेरे जितना प्रॉब्लम्स है वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एंड आई एम वेरी पीसफुल पर्सन। और मैं जब अगर मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना प्रॉब्लम मेरे पास था क्यों, अगर उस जगह में गया तो प्रॉब्लम्स निकल गया। सो आई एम इन अ डिफरेंट प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड दैट प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस हैज सॉल्व्ड ऑल माय प्रॉब्लम्स एंड आई एम ए पीसफुल पर्सन।
हाँ, और एक सुना देंगे बस फिर पूरा करते हैं।
ओम शांति। यहाँ आने के बाद
नहीं नहीं यहाँ अभी अभी, अभी, मैं, अभी मैं, योग में क्या हुआ वही बोलना है।
मैं पहली बार अपनी आत्मा से परिचित हुआ हूँ, अब तक अपने शरीर में जी रहा था, इस पल से मैं अपनी आत्मा स्वरूप शांत स्वरूप आत्मा में जीऊंगा।
और किसको बहुत अच्छा, बस एक आधा ज्यादा।
ओम शांति।
ठीक,
मुझे तक अभी तक यही नहीं समझ आ रहा था, पहली दो स्टेजें तो समझ आ गई थी, आत्मा के और परमात्मा की, शिव बाबा की, वो कनेक्शन कैसे करना है मेरे को समझ नहीं आ रहा था। अभी मेरे को वो
कनेक्शन
समझ आ गया, करेक्टर से परफेक्ट होने की।
ओके ओके, उम्मीद रखता हूं। प्लीज, देरी हुई ना इसलिए फिर पर्सनली सुने अब करेंगे, लेकिन मेडिटेशन स्पेयर टायर नहीं है, मेडिटेशन स्टेयरिंग व्हील है। कि जिससे आप सारे जीवन को, हाँ, तो स्टेयरिंग व्हील के रूप में यूज करेंगे या स्पेयर टायर के रूप में कैसे करेंगे यूज? हाँ, तो स्टेयरिंग व्हील के रूप में यूज करना है तो रोज करना पड़ेगा, है ना? रोज करेंगे? अच्छा, चलो मैं ताली बजाता हूं, इतने सारे रोज मेडिटेशन। और बेस्ट स्थान है सेंटर पर जाकर के करना। अच्छा, बहुत सारी चीजें थी, मैं नहीं कवर पाया। एक तो जो सुप्रा कॉन्शियस की बात आपको कही ना, मेरी कई सीडीज है, वो भी आप देखेंगे हमारे काउंटर पर मिलेगी आपको। एक है सुप्रा कॉन्शियस को जगाना, वो डिटेल में उसमें जानेंगे, और कुछ बुक्स भी है। खाली मैं एक बुक आपको सजेस्ट करता हूं, वह है मन की बात, शायद अभी भी आपको मिलेगी, आप यहां से बाहर जाएंगे तो सेशन के बाद आपको मिलेगी, तो वह बुक जरूर पढ़ो। उसमें अभी जो मैंने बातें बताई ना, इसी और भी मेरी 7-8 किताबें हैं, लेकिन फिर और आप अगर नीचे जाएंगे तो एक ओम म्यूजियम है, वहां पर और भी आपको किताबें मिलेगी। और एक है 21वीं सदी में तनाव मुक्त जीवन। और भी आपके प्रश्न हो तो बोले सेशन पूरा हो जाए फिर आप पूछ सकेंगे, शेयर भी कभी जरूरत पड़े तो भी। मैं रोज सवेरे भगवान को प्रार्थना करता हूं, इंग्लिश में भी बहुत सारी है, ये स्ट्रेस फ्री लिविंग इन 21st सेंचुरी इंग्लिश में है, फिर डायबिटीज पर इंग्लिश में है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, मोस्ट ऑफ द बुक्स इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुई है। अच्छा, मैं रोज सवेरे प्रार्थना करता हूं भगवान की कि मेरे जैसे पागलों के डॉक्टर की किसको भी जरूरत नहीं पड़े, भगवान सबको स्वस्थ रखना। हाँ, लेकिन फिर भी जरूरत पड़े ना तो कांटेक्ट करने का, ऐसा नहीं पड़े तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इन पंक्तियों के द्वारा पूरा करता हूं। यात्रा में होती है शिकायत मुसाफिर को, होती है ना, इसीलिए तो रेलवे में भी रिजर्वेशन होता है, परंतु कुछ तो करो उस लंबी यात्रा के लिए जहां न स्टेशन न टिकट होती है। ओम शांति।
बहुत खूब कहा है, शैले शैले न माणिक्यम, मोक्तिकम न गजे गजे, साधो न ही सर्वत्र, चंदन न वने वने। बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे डॉक्टर्स से आप मिले होंगे, लेकिन जैसे डॉक्टर गिरीश पटेल साहब हैं जिन्होंने अपना अमूल्य समय हम सभी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए दिया और परमात्मा के साथ हम सबको जोड़ा, तो एक छोटी सी घटना याद आती है। एक जिज्ञासु के रूप में एक छोटा सा बालक बड़े तपस्वी संत के पास ये सोच के गया कि इनके पास कोई ऐसी जादुई शक्ति, कोई ऐसी मणि मुझे प्राप्त हो जाए जिसके द्वारा मैं बहुत धन एकत्रित कर सकूं। तो उसने अपनी बात अपने मन में ही रखी और सिर्फ ये कहा कि मैं आपकी सेवा और आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूं। उसका लक्ष्य तो कुछ और ही था, लेकिन जो इतने पहुंचे हुए संत थे तो वो उसके मनोभावों को भी पहले दिन ही जान चुके थे, फिर भी उन्होंने उसकी परीक्षा लगातार ली। और जब वो बालक ऐसा महसूस करने लगा कि शायद गुरुजी मुझसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे और मैं शायद वो शक्ति कभी ना प्राप्त कर पाऊं, तो वो थोड़ा सा मुरझाया हुआ उदास सा था, जैसा कि सेशन से पहले शायद आप थे। तो उस रात्रि को गुरुजी के चरण दबा रहा था, थोड़ा सा उदास था, तो गुरुजी ने कहा कि आप आज क्यों उदास हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आप पारस मणि की खोज में यहां तक आए हैं, क्या यह सत्य है? तो शिष्य ने गर्दन नहीं उठाई और अपनी सहमति प्रकट करी। तो गुरुजी ने कहा कि आप ये चाबी लीजिए और फला फला दिशा की तरफ जाइए, वहां एक वृक्ष है, उस पर एक पत्थर है, उस पत्थर को थोड़ा सा ही जोर लगाएंगे तो वो हट जाएगा, और उसके नीचे एक बॉक्स है, उस बॉक्स में ताला लगा हुआ है और उसके अंदर एक और बॉक्स है, और उस बॉक्स के अंदर ही पारस मणि है और वो आज हम आपको देंगे। तो वो बच्चा इतना उत्साह से भर गया और तुरंत गया, और वैसा ही हुआ, वहां एक पत्थर था, पत्थर हटाया, बॉक्स निकला, बॉक्स को खोला, उसके अंदर एक और बॉक्स था लेकिन वो भी लॉक था। तो वह जैसे आधे रास्ते तक पहुंचता है तो वो फिर उदास हो जाता है और पहले से ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो बॉक्स लोहे का था और अगर उसमें सचमुच पारस मणि होती तो सबसे पहले तो वो बॉक्स ही सोने का होना चाहिए था, क्योंकि तर्क शक्ति जो डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा ये जो ऊपर वाला ब्रेन है ना हमको रोकता है। तो उन्होंने फिर उस बॉक्स की चाबी उनको दी, वो चाबी उसने खोली तो भी वो उदास ही था। तो उसमें एक कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज भारी सी थी। तो उन्होंने अपने शिष्य को समझाया, उस बालक को समझाया कि देखो वत्स, ये पारस मणि वास्तव में इस लोहे के पात्र को स्पर्श ही नहीं कर पा रही है, इस कपड़े की इस परत के कारण, इस पर्दे के कारण। ठीक वही स्थिति हम सब आत्माओं की भी रहती है। हम चाहते हैं और हमारे पास वो पारस्वणी परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन वो जो अहंकार और जो बीती हुई दुखद घटनाएं हमारे साथ परत के रूप में चलती हैं, तो उस परम प्रकाश के सानिध्य को, उसकी पवित्र किरणों को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो आज डॉक्टर साहब ने किया। इसलिए जोरदार फिर से आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हमारे साथ हैं तरुण भाई साहब, जो डीजीएम है हीरो होंडा लिमिटेड गुड़गांव प्लांट में, और आप प्लानिंग कमेटी में हैं, प्लानिंग प्रोडक्शन प्लानिंग में आप इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं, अपने सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, और प्रथम बार इस तपोवन में, इस प्रांगण में ब्रह्मा कुमारी इसके साथ आपने ये 3 दिन का सेमिनार अटेंड किया है। आप अपने विचार, अपना अनुभव और प्रेरणाएं हम सबके बीच रखेंगे। भ्राता तरुण शर्मा जी।
शुक्रिया सोनिया बहन, थैंक यू डॉक्टर पटेल। नमस्कार, ओम शांति। नमस्कार, बेसिकली हमारे जिस इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ा हुआ हूं हीरो होंडा से, वहां का ट्रेडिशन है कि हम लोग गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं, हम लोग नमस्कार करते हैं। और ओम शांति, जिस इंस्टीट्यूट से मैं 30 तारीख से जुड़ा हूं वो वहां का ट्रेडिशन है, तो शायद आज के बाद मैं नमस्कार ओम शांति का कॉम्बिनेशन अपने इंस्टीट्यूट में जागरूक करूंगा। एक जटिल सब्जेक्ट अल्टीमेट इंटेलिजेंस, जो शायद हम लोगों के लिए एक नया गूढ़ सब्जेक्ट होगा, शायद कोई भी इसके बारे में नहीं जानता होगा। और जिस सरलता से, जिस सिंपलिसिटी से डॉक्टर साहब ने इसको बताया है, इट्स रियली वेरी गुड। थैंक यू डॉक्टर साहब। एटलीस्ट फॉर मेरे लिए ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट था। इंटेलिजेंस मेरे लिए एक नॉलेज से ज्यादा कुछ नहीं था, बट पता लगा कि ये इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस नहीं है, इट्स अ समथिंग स्पिरिचुअल एसक्यू जिसे हम कहते हैं। और डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा पहले भी मेरा साथ हुआ है हीरो होंडा में। प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, बट हम लोग इनको हीरो होंडा में एक स्पिरिचुअल मैनेजमेंट गुरु के नाम से जानते हैं। और इनकी बहुत अच्छी एक खूबी है कि कितना भी बोर्ड सब्जेक्ट होगा ये ऑडियंस को सोने नहीं देते हैं, क्योंकि ये एक प्योरली लेक्चर सेशन नहीं लेते हैं, एक सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप सेशन लेते हैं जिसमें ऑडियंस का और इनका बराबर का भागीदारी होता है। इसलिए आप देखते हैं बीच में उठाते हैं, ताली बजवाते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं जिसे जो सोना चाहता भी होगा वो सो नहीं पाएगा। कम टू द पॉइंट, इस 3 दिन में जो एक सब्जेक्ट जो हमने लिया था, स्पिरिचुअलिटी फॉर प्रोफेशनल एक्सलेंस, एक प्रोफेशनल एक्सलेंस थ्रू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट जगत से जुड़ा हुआ हूं, मेरे मायने यहां तक खत्म नहीं होते हैं। प्रोफेशनल एक्सीलेंस होती है एक टॉप मैनेजमेंट के लिए। बहुत खुशी है कि रेलवे के टॉप मैनेजमेंट यहां बैठे हुए हैं, एंड ये एक टूल है जिससे एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक सुझारू स्ट्रेटेजी डेवलप की जा सकती है, एक अच्छी पॉलिसी डेवलप की जा सकती है, बट यहां फुल स्टॉप नहीं लगता है। प्रोफेशनल एक्सीलेंसी के बाद में आता है ऑपरेशनल एक्सीलेंसी, और ऑपरेशनल एक्सीलेंसी तब होगी जब स्ट्रेटेजी बनाने वाले इस कला को, मैं इसको कला कहूंगा, साइंस नहीं कहूंगा, इस कला को डाउन द लाइन एंड अप टू द बॉटम लाइन इसको प्रेरित नहीं करेंगे, ये ऑपरेशनल एक्सीलेंसी नहीं होगी। एंड जब ऑपरेशनल एक्सीलेंसी नहीं होगी तो ये कस्टमर डिलाइट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और अगर ये कन्वर्ट नहीं होगी कस्टमर डिलाइट में तो शायद प्रोफेशनल एक्सीलेंसी कोई मायने नहीं रहते हैं। जब तक इस चीज का रिकॉग्निशन नहीं है, आप अपने आप में बहुत एक्सीलेंट हैं, बट आप इस एक्सीलेंसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उसके कोई मायने नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम एक कॉर्पोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, हम हर चीज को जोड़ते हैं अल्टीमेट रिजल्ट से। अल्टीमेट रिजल्ट मीन्स जो हमारा कस्टमर है उसको रिकॉग्नाइज करे। जापान के एक क्वालिटी गुरु हैं इशिकावा जी, जिन्होंने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम दिया है, जिन्होंने एक 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 टूल दिया है जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के करेक्टर को, व्यक्तित्व को दर्शाता है। बहुत अच्छी कही है। एंड आज ये तीन दिनों में मैंने ये चीज सीखा है कि वास्तव में जैसे भावना होगी वैसे ही भावना का आउटपुट मिलेगा, चाहे वो कुक हो, चाहे वो मोटरसाइकिल बनाने वाला कोई कारीगर हो, चाहे वो इंजन जलाने वाला रेलवे का कर्मचारी हो। इन साथियों के साथ मैं धन्यवाद करूंगा पटेल जी का, सुनिए बहन का और आप सबका कि आप सब ने इस चीज का मूल्य जाना समझा। एंड गुजारिश कि आप इस दीवे को और दीवे जलाएं और इस पोजीशन में लेकर जाएं कि दीवे खुद आपके पास आए रोशनी लेने के लिए। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद तरुण भाई साहब। कर्मेषु कौशलम् सह योग, ये हमारे श्रीमद् भगवद गीता के वचन हैं और वही प्रयास इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का है, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके बैनर के नीचे ये ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग की तीन दिन की जो सेमिनार है हम सभी इसको ज्वाइन कर रहे हैं। अभी आगे के सेशंस भी आपको मिलेंगे, लेकिन एक नोट है, आप सबको जो फाइल्स एंड फोल्डर्स दिए गए हैं उसमें एक फीडबैक फॉर्म है, प्लीज देखिएगा। उस फीडबैक फॉर्म को आपको अभी फिल करके और जो हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफिस है या जो आपके साथ गाइड आए हैं उनको आप सबमिट करेंगे और आप उसमें नंबरिंग देंगे, आपको कैसा कौन सा लेक्चर बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा और कौन सा आप और चाहते हैं, तो वो आप पूरा स्पष्ट अपना लिखेंगे। और जिन्होंने सर्टिफिकेट्स के लिए कहा है वो आज रात्रि तक या सुबह ही मिल पाएंगे, इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे। अभी परमात्मा की पुण्य स्मृति के द्वारा ये सत्र हम पूर्ण करते हैं
और कोई उठे नहीं, थोड़ा हमने